भगवान पार्श्वनाथाय नमः।
कमठे धरेणेन्द्रे च सौचित्तं कर्म कुर्वती प्रभोस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथं श्रियेस्तु वः।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दुख की रजनी बीतने के पश्चात सुख की सुहानी भोर अवश्य होती है। प्रकृति का ये नियम ही जीवन में आशावादी विचारों का पोषक है और ये आशा ही हमारे संपूर्ण उपलब्धियों की प्रेरक शक्ति है, जिसके बिना प्राणी अकर्मण्य कुंठित और मानवीय मूल्यों से च्युत होकर जड़वत हो जाता है। जन्म और मृत्यु की पीड़ा असह्य होती है, पर इस मायामय संसार में प्राणी अपनी अज्ञानता के कारण इतना घुल मिल जाता है कि जीवन के सर्वोच्च मूल्य की प्राप्ति हेतु उसका ध्यान विरले ही जाता है। यही अज्ञानता ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं होने देती। ज्ञान स्वपरभासी होता है, अपने को जानना ही दर्शन की मूल समस्या है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए सांसारिक आकर्षण महत्वहीन हो जाते हैं। पिछले भाग में आपने भगवान पार्श्वनाथ के संसार मार्ग को देखा। भगवान पार्श्वनाथ के अंतःकरण में करुणा का विशाल सागर हिलोरे लेता रहता था। अज्ञान अंधकार में भटके हुए प्राणियों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। दुखी आत्माओं की करुण पुकार ही उन्हें इस धरा पर खींच लाई थी। ऐसी अलौकिक विभूतियां दीर्घ काल तक सांसारिकता में नहीं फंसती। अज्ञान अंधकार कभी इतना प्रभावी नहीं होता कि वो ज्ञान सूर्य को सदा के लिए आच्छन्न कर दे। सांसारिक नश्वरता ने भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया। तो आइए हम भगवान के मोक्ष मार्ग की ओर चलते हैं।
जब भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष के हुए तो अयोध्या नरेश जयसेन ने अश्व आदि की भेंट के साथ भगवान की सेवा में अपना एक दूत भी भेजा था। एक बार राजदूत ने पार्श्वनाथ से अयोध्या के वैभव की चर्चा करते हुए भगवान वृषभदेव का यशगान प्रस्तुत किया। उसकी वाणी इतनी हृदय स्पर्शी थी कि भगवान पार्श्वनाथ विरक्त हो गए। उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। देवों ने भगवान के विचारों की सराहना करते हुए धर्म तीर्थ प्रवर्तन करने तथा प्राणियों के उद्धार की प्रार्थना की।
एक दिन भगवान पार्श्वनाथ ने अपने माता पिता तथा परिजनों से दीक्षा लेने की प्रार्थना की और देव निर्मित विमला नामक पालकी में आरूढ़ होकर अश्ववन पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान बेला का नियम धारण कर एक शिला पर उत्तराभिमुख होकर पर्यंकासन में विराजमान हो गए। वहां उन्होंने ओम नमः सिद्धेश्य मंत्र के साथ केश लुंचन कर 300 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली।
इंद्र ने भगवान के केश को रत्न मंजूषा में रखकर क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिया। दीक्षा ग्रहण के उपरांत विशुद्धता के कारण भगवान पार्श्वनाथ को मनः पर्याय ज्ञान हो गया। इसके पश्चात भगवान पारणा के लिए गुल्मखेर नगर पधारे, जहां के श्यामवर्णी राजा धन्य ने नवधा भक्ति पूर्वक भगवान को परमान्न देकर अक्षय पुण्य प्राप्त किया। देवों ने पंचाश्चर्य किए।
दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान ने 4 मास तक विहार यात्राएं की। इसी क्रम में वो अपने दीक्षा वन पधारे और देवदारु वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक ध्यानालीन रहे। उसी समय आकाश मार्ग से संवर देव जा रहा था। अपने विभंगावधि ज्ञान से उसे पूर्व भव के वैर भाव का स्मरण हो आया। उसने भयंकर गर्जन तर्जन करके वर्षा आरंभ की, तूफान लाया, अनेक अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा, अप्सराओं को भेजा, पर वीतरागी अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ पर उसका कुछ भी असर ना हुआ। वो अपने अंतर्विहार में ही लीन रहे।
प्रभु नाम नि औषधि खरा भाव दिखाए, रोग शोक व्यापे नहीं, संकट सभी दूर जाए।
आचार्य प्रवर सिद्धसेन दिवाकर ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में शंबर द्वारा किए गए भयानक उपसर्गों की निष्फलता का सजीव चित्रण किया है। वो कहते हैं, हे नाथ, उस दुष्ट कर्मठ ने क्रोधावेश में जो धूल आपके ऊपर फेंकी, वो आपकी छाया पर भी आघात न पहुंचा सकी। अवधि ज्ञान से यह उपसर्ग जानकर नागेंद्र धरणेंद्र ने अपनी इंद्राणी के साथ आकर भगवान पार्श्वनाथ को अपने फणों से ऊपर उठा लिया और पद्मावती देवी भगवान के ऊपर वज्रमय छत्र तान कर खड़ी हो गई।
अपनी पराजय स्वीकार कर कमठासुर ने 10 भवों के वैर भाव का परित्याग कर भगवान की स्तुति की। अपने समस्त घातिया कर्मों के क्षयोपरांत चैत कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल विशाखा नक्षत्र में भगवान पार्श्वनाथ को लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
अन्यथा शरण
शंबर नामक ज्योतिष देव भी समय पूर्ण होने पर शांत हो गया। उसने सम्यक दर्शन संबंधी विशुद्धता प्राप्त कर ली। गजपुर नरेश स्वयं उन्हें भगवान पार्श्वनाथ से समस्त परिजनों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान ने धर्म तीर्थ प्रवर्तन किया। मुनि स्वयं भगवान पार्श्वनाथ के प्रथम गणधर तथा उनकी कुमारी कन्या प्रभावती आर्य का संघ की मुख्य गणनी हुई।
इसके पश्चात भगवान पार्श्वनाथ अनेक वर्षों तक धर्म यात्राएं करते रहे। उनकी पीयूष वर्षी वाणी अनेक धर्म कामी आत्माओं को तृप्त करती रही। जब उनकी आयु का मात्र एक वर्ष ही अवशिष्ट था तो उन्होंने सम्मेद शिखर पर पधार कर 36 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। अंततः श्रावण शुक्ल सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में प्रातःकाल अपने समस्त अघातिया कर्मों के क्षयोपरांत भगवान मुक्त हो गए। देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर।
भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष का नाम पार्श्व यक्ष और यक्षिणी का नाम पद्मावती था। तीर्थंकरों के शासन में ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। पद्मावती देवी की मूर्तियों की संख्या सर्वाधिक है। उनकी मूर्तियां सुवर्णी, कुक्कुट सर्प की सवार और चार भुजाओं वाली हैं। उनके दाएं हाथ में कमल और पाश तथा बाएं हाथ में फल और अंकुश होते हैं।
भगवान पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व बहुव्यापी था। वे निर्ग्रंथ वनों में रहते थे। उनके रहने और ध्यान के स्थानों को निषद और निषदी कहते हैं। भगवान पार्श्वनाथ पर श्रद्धा और विश्वास रखने के कारण ही आज सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ हिल रख दिया गया है। भगवान पार्श्वनाथ के लोक प्रभावी परिणाम के कारण ही तीर्थंकर मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां पार्श्वनाथ की ही हैं। सम्मेद शिखर को तीर्थराज कहा गया है। एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई।
समरो मंत्र भलो नवकार ए छे चौद पुरव नो सार ए ना महिमानो नहीं पार ए नो अर्थ अनंत अपार।
समरो मंत्र भलो नवकार ए छे चौद
पराधे कुजने कृपां हंतर तारयो ईषद वाष्पादयो भद्रं गिरिवीर्जिन नेत्रयो।
इस संसार में पवित्र आत्माओं के शुभागमन से उनके द्वारा सद्धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता और जीवन विकास के उत्तम तत्व प्रकट होते हैं। उन पवित्र आत्माओं की वाणी, व्यवहार और विहार यात्राओं द्वारा उनकी भव भय निवारक प्रतिभा अभिव्यक्त होती है। उनकी वाणी ही शास्त्र का रूप धारण कर लेती है तथा उनका व्यवहार ही पवित्र आचार बन जाता है। ऐसी पावन आत्माओं की विहार यात्राएं जन सामान्य के लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं तथा उनका ज्ञान आलोक अज्ञान के गहन तिमिर का निवारण करने में सर्वथा समर्थ होता है। अध्यात्म की जननी भारत को ऐसी अनेक प्रतिभा संपन्न विभूतियों से अलंकृत रही है जिन्होंने सांसारिक आकर्षणों से विरक्त होकर कठोर साधनाओं द्वारा आत्म तत्व का सम्यक बोध प्राप्त कर दुखी आत्माओं का सम्यक मार्गदर्शन किया है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण ये विश्व हमें इस सृष्टि के आदि संचालक शक्ति का चिंतन करने को विवश कर देता है, पर बुद्धि की सीमाओं से परे रहने वाली उस चरम सौंदर्यात्मक सत्ता का परिज्ञान भला बुद्धि से कैसे संभव है। आत्मा अपने उत्थान और पतन के लिए स्वतः ही उत्तरदायी है। इसके पीछे जन्म जन्मांतर के कर्म संबंधों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनेक जन्मों से जन्म मरण श्रृंखला में आबद्ध जीव अपने सुकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही संवर और निर्जरा के माध्यम से कषायों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अंततः उसे जीवन के चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कालचक्र की परंपरा के अनुसार ही 24 तीर्थंकरों की परंपरा भी चलती रहती है। इसी कालचक्र के चतुर्थ आर्य के अंतिम चरण में गतिमान होने पर इस धरा की धर्म पिपासु आत्माओं की कारुणिक ध्वनि गूंज रही थी। ऐसे हृदय विदारक वातावरण में प्राणी मात्र को जीवन के सर्वोच्च मूल्य की प्राप्ति हेतु वर्धमान करने वाले भगवान महावीर स्वामी का शुभागमन हुआ। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ द्वारा बीजारोपित जैन धर्म की पावन परंपरा अंततः 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के रूप में पूर्णता को प्राप्त हुई। सत्वेशु मैत्रीवाणी के पोषक भगवान महावीर स्वामी अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों का सम्यक पालन करने के उपरांत ही मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए थे। तो आइए
हम भगवान महावीर स्वामी के संसार मार्ग की ओर चलते हैं। वैशाली के उपनगर क्षत्रिय कुंड के महाराज सिद्धार्थ महाराज चेतक के पुत्री त्रिशला के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे। एक समय की बात है, महारानी त्रिशला सुखपूर्वक शयन कर रही थी। मनोहर नामक चौथा प्रहर व्यतीत होने जा रहा था। उसी काल विशेष में महारानी को 14 शुभ स्वप्नों की एक श्रृंखला के दर्शन हुए। अंतिम स्वप्न में उन्होंने अपने मुख में सिंह प्रवेश करते हुए देखा। प्रातःकाल मांगलिक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने महाराज से अपने शुभ स्वप्न दर्शन की बात बताई। अवधि ज्ञान के धारक महाराज सिद्धार्थ ने सम्यक मीमांसा करने के पश्चात इसे तीनों लोगों के स्वामी तीर्थंकर भगवान के शुभागमन का बोधक माना। महाराज की बात सुनकर रानी त्रिशला के हर्ष की सीमा ना रही। चारों प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त हो गया। मयूर नर्तन करने लगे और मांगलिक वाद्य यंत्रों की अनुगूंज सुनाई देने लगी। भगवान महावीर तीर्थंकर थे, पर तीर्थंकर पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने विगत 26 भवों में कठोर साधना की। उनकी नानाविध रूप रंगावन भव परंपरा का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि उसके परे ज्ञान के अभाव में एक तीर्थंकर की पूर्व साधना अज्ञात ही रह जाएगी। भगवान महावीर स्वामी के आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ नए सार नामक अवतार भाव में हुआ था। उस समय वो एक ग्राम के मुखिया थे तथा लकड़ियां काटकर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार उन्होंने मार्ग भूले हुए तपस्वी मुनिवरों का यथोचित आदर सत्कार कर उनके अमृत वचनों का भरपूर रसास्वादन किया। परिणामतः उनके अंतःकरण में सम्यक दर्शन का अलौकिक आलोक जागृत हो गया। अपनी जीवन लीला की समाप्ति के पश्चात नए साथ अपने द्वितीय भव में देवलोक में उत्पन्न हुए और देवलोक की आयु व्यतीत होने के उपरांत तृतीय भव में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि के रूप में धरा पर आए। भगवान ऋषभदेव प्रभु के उपदेशामृत का रसपान कर इन्होंने भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली थी और तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान ऋषभदेव प्रभु ने भरत चक्रवर्ती से मरीचि को 24वें तीर्थंकर के रूप में बता दिया था, जिसे श्रवणोपरांत मरीचि के अंतःकरण में अहम भाव जागृत हो गया। इसी क्रम में वो अगले भावों में क्रमशः पंचम ब्रह्मलोक में देव कौशिक ब्रह्मा पुष्यमित्र ब्रह्मा प्रथम सौधर्म देवलोक में देव अग्निद्योत ब्रह्मा द्वितीय ईशान देवलोक में देव अग्निभूति ब्रह्मा तृतीय संत कुमार देवलोक में देव भारद्वाज चतुर्थ महेंद्र देव लोक में देव स्थावर ब्रह्मा और पंचम ब्रह्म देव लोक में देव जीवन व्यतीत करते हुए अपने 16वें भाव में विषाक्ता भूति के आत्मज विश्व भूति के रूप में उत्पन्न हुए और अंततः विरक्त होकर आचार्य श्री आर्य संभूति स्थविर से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत अगले भवों में क्रमशः महाशुक्रदेव लोक में देव त्रिपृष्ठ वासुदेव सप्तम नरक में नारकी सिंह चतुर्थ नरक में नारकी मनुष्य भव प्रिय मित्र चक्रवर्ती सप्तम महाशुक्रदेव लोक में देव और नंदन राजकुमार का जीवन व्यतीत करते हुए अपने 26वें भाव में 10वें प्राणत देवलोक में देवलोक को प्राप्त हुए। अब आइए हम महारानी त्रिशला की अवस्था पर विचार करते हैं। महारानी त्रिशला का गर्भ वास्तव में इंद्र के आदेश से ब्राह्मण देवानंदा के गर्भ से परावर्तित होकर पोषित हो रहा था। भगवान के गर्भभार से महारानी त्रिशला का रूप लावण्य में द्विगुणित होता जा रहा था। अंततः 9 मासोपरांत चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र की स्थिति होने पर आयरमा नामक शुभ योग में निशा के अंत भाग में महारानी त्रिशला ने सिंह लक्षणधारी सुवर्णी पुत्र को जन्म दिया।
जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे जे जीव जिन वर ने तवे ते जीव ने पण धन्य छे।
भगवान के शुभागमन से धरा धन धान्य संपन्न हो गई। प्रकृति आनंद से झूम उठी। दिशाएं निर्मल हो गई। अंबर से रिमझिम बूंदे गिरने लगी। बंदजन मंगल गान करने लगे तथा देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से शचि ने प्रसूति गृह में जाकर तीर्थंकर प्रभु और माता त्रिशला को प्रणाम किया। बाल भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके भक्ति प्लावित नयन हर्षाश्रु पूरित हो गए। भगवान के स्पर्श सुख से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। इंद्र बाल भगवान को ऐरावत पर आसीन कर सुमेरु पर्वत ले गए। वहां क्षीर सागर की पावन जल धाराएं भगवान को अभिषिक्त कर स्वयं को धन्य अनुभव करने लगी। अभिषेकोपरांत मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत बाल भगवान माता त्रिशला के पास लाए गए। एक दिन बाल भगवान अपने रत्न जड़ित पालने में झूल रहे थे। उस समय उनकी कांति अत्यंत हृदयावर्चक थी। ऐसे रमणीय वातावरण में संयोग से दो मुनियों का आगमन हुआ। वो किसी जैन सिद्धांत के प्रति संशयग्रस्त थे, पर ये क्या, जो ही उन्होंने बाल भगवान के दर्शन किए उनका संशय जाता रहा। पहले वो प्रश्नचिन्त थे, अब प्रसन्नचित्त हो गए। उनका हृदय भगवान के भक्ति सागर में अवकाहन करने लगा। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान को नमन किया।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूरि भद्राचा जैन धर्मोस्तु मंगलम।
क कुमार वर्धमान बचपन से ही बड़े गंभीर, शांत, उदास और अंतर्मुखी थे। उनको आह्लादित करने के लिए देव भी बाल रूप में पधारते रहते थे। एक बार भगवान अपने समवयस्क साथियों के साथ आंवली क्रीड़ा कर रहे थे। इस क्रीड़ा में एक वृक्ष को केंद्र मानकर दौड़ते हैं, जो सर्वप्रथम उस पर चढ़कर उतर आता है वही विजयी होता है, और पराजित बालकों के कंधे पर चढ़कर वो उस स्थान तक जाता है जहां से दौड़ प्रारंभ हुई थी। जब भगवान क्रीड़ा रथ थे, उसी समय संगमधर नामक एक देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक विशाल सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष को लपेट लिया। इस आसन्न विपत्ति से वर्धमान के समस्त साथी पलायन करने लगे, पर भव भय तारणहार भगवान पर इसका देश मात्र भी प्रभाव न हुआ। वो उस भयंकर सर्प पर आरूढ़ होकर ऐसे क्रीड़ा करने लगे मानो माता त्रिशला के पलंग पर हो। अंततो गत्वा संगम देव को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने भगवान को महावीर संज्ञा से विभूषित किया था।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष अर्जुनेश्वर।
जब भगवान 8 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें अध्ययन हेतु कलाचार्य के पास भेजा। जब सौ धर्मेंद्र को अवधि ज्ञान द्वारा इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वो तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कलाचार्य के गुरुकुल पहुंचे और भगवान को मन ही मन नमन करते हुए उनसे व्याकरण से संबंधित कठिन से कठिन प्रश्न पूछने लगे, जिनका प्रभु ने बहुत ही समीचीन निवारण किया। अंततः आचार्य ने कहा कि ये बालक तो समस्त विषयों में पारंगत है, समस्त शास्त्रों में निष्णात है, इसे मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने भगवान का सम्यक परिचय देते हुए कहा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये गुरुराम गुरु है। ये इस संसार में पढ़ने नहीं अपितु पढ़ाने आया है। अंततः आचार्य और इंद्र दोनों ने ही बालक प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट की। बाल भगवान क्रमशः शैशवावस्था और किशोरावस्था को पार कर जब युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो उनकी कीर्ति पताका चतुर्दिक फैलने लगी। वो एक राजकुमार थे, भोग विलास की समस्त सामग्री उन्हें सुलभ थी, उनकी उम्र भी विवाह योग्य हो गई थी, पर उनकी वृत्ति आत्मकेंद्रित थी। कंचन और कामिनी की भावना का उनमें नितांत अभाव था। वो समस्त जागतिक आकर्षणों से परे रहकर सर्वदा आत्मदर्शन में ही जागृत रहना चाहते थे, पर अपनी माता के स्नेहवश कुमार वर्धमान ने कलिंग नरेश जित शत्रु की अनिंद सुंदरी कन्या यशोदा के साथ परिणय सूत्र में बंधना स्वीकार कर लिया। उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। ध्यातव्य है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार कुमार वर्धमान आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों का सम्यक रीति से पालन करते हुए क्रमशः मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए थे। ओम नमो महावीर स्वामी ने नमः मोक्ष मार्ग
वीरा सर्वसुरासुरेन्द्र महितो वीरं बुधा संकिता वीरेणा विहतात्मकर्मनिचयो वीराय तस्मै नमः वीरातीर्थमिदं प्रवत्तमतुलम् वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीप्रतिकीर्तिकान्तिनिचया श्रीवीरभद्रं दिशा।
कालचक्र चतुर्थ आर्य के अंतिम चरण में गतिमान था। उस समय संसार पूर्ण वैभव संपन्न था। सांसारिक आकर्षणों में लीन रहने के कारण जीवात्मा भोग में चरम सुख प्राप्ति चाहती थी। मानवीय मूल्यों के प्रति नैराश्य भाव बढ़ता जा रहा था। प्राण अहिंसा के उत्कृष्ट भाव से विरत होकर क्रमशः हिंसा की ओर उन्मुख होने लगा था। वो भूल गया था कि इन सांसारिक सुखों के पीछे दुख का अनंत सागर हिलोरे ले रहा है। अज्ञानता की अमानिशा में वो मानव जीवन के उच्चादर्शों के प्रति उदासीन होने लगा था। वो भूल गया था कि इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, वो किसे छोड़कर आया है और ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक ना एक दिन उसे इस असार संसार से सदा सदा के लिए पृथक कर देगी। वास्तव में ये सार्वभौम प्रश्न अनादिकाल से ही मानव मन सदा व्यथित करते रहे हैं, जिनके समाधान हेतु वो आध्यात्मिक चिंतन करने को बाध्य होता रहा है। सच्चाई तो ये है कि हमारे समस्त ज्ञान विज्ञान इन्हीं प्रश्नों के समाधान में किए गए प्रयास हैं। ज्ञातव्य है कि जगतारणहार 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इन्हीं सार्वभौम प्रश्नों के हल लेकर अंतिम तीर्थंकर के रूप में गुरुनाम गुरु बनकर अज्ञान अंधकार में भ्रमित मानव चक्षु को ज्ञानांजन शलाका से उन्मीलित करने पधारे थे। मानव जीवन के अमावस्या की वो भयानक रात प्रतिपदा के इस तेजस्वी सूर्य के दर्शन मात्र से छिन्न भिन्न हो गई। स्मर्तव्य है कि जब भी इस धरा पर अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर होती है तो ज्ञानालोक की धारक दिव्य आत्माएं धर्म पिपासुओं की करुण पुकार से द्रवीभूत होकर उनका सम्यक मार्गदर्शन करने के लिए अवश्य पधारती हैं। बस साधक के अंतःकरण में उन्हें बुलाने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी जगतारणहार भगवान महावीर स्वामी वो उदीयमान सूर्य हैं जिनकी ज्ञान प्रभा ने अनेक आत्माओं को जन्म मृत्यु परंपरा से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया है। तो आइए इस कड़ी में हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन के दूसरे पक्ष अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी बाल्यावस्था से ही अंतर्मुखी थे। उनकी चिंतन धारा ने उन्हें सांसारिक आकर्षणों के प्रति उदासीन बना दिया था। अपने राजप्रासाद के एकांत कक्ष में ध्यानस्थ होकर वो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तल्लीन हो जाया करते थे। उनके प्रति श्रद्धा रखने के कारण अनेक लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करनी प्रारंभ कर दी थी। ये जीवन तो स्वामी की मूर्तियां थी। जब भगवान ने जीवन के 30 वर्ष पूर्ण किए तो एक दिन अकस्मात अवधि ज्ञान से उन्हें अपने पूर्ण भाव का स्मरण हो आया। परिणामतः उनके मन में निर्वेद की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी। लोकांतिक देवों ने भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें धर्म तीर्थ प्रवर्तन काल की समीपता का बोध कराया। इंद्र ने भगवान को सिंहासन पर आसीन कर मांगलिक वस्त्रों से अलंकृत करने के उपरांत पावन शिविका में आरूढ़ किया। तत्पश्चात अपने मृदु वचनों से स्वबंधुजनों से विदा लेकर भगवान ज्ञातखंड उपवन पधारे। वहां भगवान ने अपने समस्त वस्त्राभूषण उतार दिए और अशोक वृक्ष के नीचे नमो सत्थानम कहकर केश लुच्चन करने लगे। सौ धर्मेंद्र ने भगवान के वस्त्राभूषणों और केश राशि को एक मणिमय पिटारे में रखकर क्षीर सागर के पावन जल में प्रवाहित कर दिया। ध्यातव्य है कि भगवान महावीर स्वामी ने एकाकी ही दीक्षा ग्रहण कर अपने बाध्य और आंतरिक परिग्रह का परित्याग किया था। इस प्रकार मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को मंगल प्रभात में भगवान मन पर्याय ज्ञान के धारक हो गए।
अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्।
इसके पश्चात भगवान ने अस्तिक ग्राम की ओर प्रस्थान किया। वहां के राजा ने मन वचन और शरीर की शुद्धता के साथ भगवान को परमान्न प्रदान कर स्वयं को धन्य किया। देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी में पधार कर नित्य नियमानुसार भिक्षा हेतु थनावह सेठ के यहाँ पधारे। संयोग से उसी समय चंपापति राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला का पापोदयवश बिकने का प्रसंग उपस्थित हुआ। धनाभा ने चंदन बाला का क्रय कर लिया, अर्थात उसे खरीद लिया, पर धनावह अनुपस्थिति में उसकी पत्नी मूला ने ईर्ष्यावश चंदन बाला का सिर मुड़वाकर तथा पैरों में बेड़ियां पहनाकर गृह तल में डाल दिया और चंदन बाला को रूखा सूखा भोजन देने लगी। जब महावीर स्वामी उधर से निकल रहे थे तो चंदना बहुत पुलकित थी। भगवान की कृपा से उसका रूप, रंग, दशा और भोज्य पदार्थ सभी परिवर्तित हो गए। चंदना द्वारा भगवान को दिए गए आहार की चर्चा सर्वत्र होने लगी।
प्रभु नाम नि औषधि खरा पावति खाय, रोग शोक व्यापे नहीं संकट सभी दूर जाय।
वत्स देश की पट्ट महिषी मृगावती उसके दर्शन को आए। सेठ धनावा भी आकर अति हर्षित हुए। मृगावती ने जब ये देखा कि ये तो उनकी छोटी बहन चंदना है तो हर्ष और विषाद से उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। श्रेष्ठी की अनुमति प्राप्त कर वो चंदना को अपने साथ ले गई, पर चंदना का मन अब पूरी तरह विरक्त हो चुका था। कालांतर में वो भगवान की आर्य का और गढ़ी बन गई।
हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं।
भगवान महावीर स्वामी को आदिकाल से अपनी आत्मा पर जमे हुए कर्मों के मलिन संस्कारों को मिटाने में 12 वर्ष लग गए थे। इसी क्रम में एक दिन वो विहार करते हुए जृम्भिक ग्राम के बाहर ऋजकूला नदी के पावन तट पर पहुंचे और वहीं शाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। अंततः आत्मा के परम पुरुषार्थ ने कर्मों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। परिणामतः उन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय नामक घातिया कर्मों के क्षयोपरांत अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली। वैशाख शुक्ल दशमी का 4th प्रहर धन्य है, जिसमें भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने। उनका शरीर शरीर महिमा का निधान बन गया। इंद्रादि देवों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने संवसरण की रचना की।
दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सुपानम दर्शनम मोक्ष साधनम।
संवसरण के मध्य में भगवान महावीर स्वामी मौन विराजमान थे। उस समय देव, मानव और त्रियंश सभी प्राणी चातक की तरह उनके ज्ञानामृत रस का पान करने के लिए आतुर थे, पर इंद्रभूति गौतम के अतिरिक्त उस मौन की भाषा को समझने वाला भला कौन था। मौन भी अभिव्यंजना है, पर उसकी सच्ची परख एक साधक ही कर सकता है। वहां के रम्य वातावरण से प्रभावित होकर इंद्रभूति ने दीक्षा ग्रहण कर ली। वो भगवान के 11 गणधरों में से एक थे। अंततः श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि मुखरित हुई।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राचार जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम्।
यद्यपि भगवान का धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा में ही होता था, पर वो प्रत्येक श्रोता के लिए प्राय था। दिव्य ध्वनि के समय भगवान के मुख पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता था। उनके व्यक्तित्व और देशना का प्रभाव तत्कालीन निर्धनों से लेकर राजाओं पर व्याप्त था।
जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे, जे जीव जिन वर ने स्तवे ते जीव ने पण धन्य छे।
भगवान महावीर स्वामी ने समस्त धर्म स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया। अहिंसा ही वो मूल तत्व है जिसमें प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना सन्निहित है। समस्त जीवों पर संयम भाव बनाए रखना ही अहिंसा है। जैन धर्म की मान्यता है कि चेतना लक्षणों जीव, अर्थात चेतनशीलता ही जीव मात्र का लक्षण है। सब में एक ही आत्मा का वास है, इसीलिए ज्ञानी जन किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि अहिंसा का सिद्धांत ही सर्वोपरि सिद्धांत है। इस अहिंसा व्रत का पालन मन, वचन और कर्म तीनों रूपों में समान भाव से होना चाहिए। इसके विपरीत आचरण निश्चित रूप से निंदनीय है। जो मनुष्य प्राणियों की हिंसा स्वयं करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है या हिंसा करने वालों का पक्षधर होता है, वो निश्चित रूप से अपने सांसारिक वैर भाव को प्रोत्साहित करता है और कर्म बंधनों की श्रृंखला में जकड़ता चला जाता है, और इस प्रकार वो मानव जीवन के गुरुतर उत्तरदायित्वों से विरत होने लगता है। अतः हमें पंच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का सम्यक रूप से पालन करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। ध्यातव्य है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकरों की परंपरा द्वारा एक ही धर्म का उपदेश दिया गया है। किसी भी तीर्थंकर ने किसी नवीन धर्म की उद्भावना नहीं की है। भगवान महावीर स्वामी के धर्म विहार और प्रभाव के समस्त प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हैं। उनकी वाणी समस्त प्राणियों पर अमृत वर्षा करती हुई सर्वत्र गूंजती रहती है।
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष दिनेश्वर।
भगवान महावीर स्वामी सर्वथा निर्ग्रंथ थे और प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते थे। उनके सिद्धांत अनेकांतवाद, स्यादवाद और आत्मवाद पर आधारित हैं, जिनमें सभी को समान स्थान प्राप्त है। उनके आत्मसंभावी शाश्वत संदेशों में सभी का हित सन्निहित है। 29 वर्ष 5 मास और 20 दिवस पर्यंत विहारोपरांत भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में अपने संपूर्ण अघातिया कर्मों के क्षयोपरांत पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। भगवान के निर्माणोपरांत इंद्र ने गोशीर्ष चंदन आदि की चिता सजाई। क्षीर सागर के पावन जल से स्नान कराने के पश्चात दिव्य अंगरागों का आलेपन किया और विमानाकार शायिका में भगवान के मृतक शरीर को रखा गया। उस समय सभी शोकमग्न थे। भगवान महावीर स्वामी के सेवक यक्ष का नाम मातंग और सेविका का नाम सिद्धाई का था। स्मर्तव्य है कि भगवान के निर्माण के पश्चात उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भगवान द्वारा उपदेशित अहिंसा मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन।
सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयते शासनम।